एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1800833231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं 9195728592272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। जो हो बैठना सब जानता। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपना। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपना। ऐ खुदावंद मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुन करके तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उन्हें विशेष आशीष दे, आत्मिक आशीष दे और शारीरिक स्वस्थ दे, ताकि वे तेरे राह में चलने सके और उन्हें तेरे नज़दीक आने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है बिना शर्त चंगाई। आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़ें, जो मत्ती रचित सुसमाचार से मिलती है, उसका 4 अध्याय और 23 पद। यहाँ कहता है, यीशु सारे गलील में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्योंकि वह बिना शर्त प्रेम करता है, इसलिए मसीह ने बिना शर्त चंगा किया। उसने यहूदियों, रोमियों और समरियों सभी को चंगा किया। उसने ना तो कोई शुल्क लिया और ना ही भविष्य में किसी कार्य या व्यवहार के लिए कोई प्रतिबद्धता मांगी। जरूरत ही काफी प्रेरणा थी। प्यारों, हालांकि यीशु लोगों की शाश्वत भलाई के लिए पूरी तरह चिंतित थे, फिर भी उनकी शारीरिक जरूरतें उन्हें चंगा करने के लिए मजबूर करती थी। यीशु हमसे निस्वार्थ परोपकार के अपने कार्य को जारी रखने के लिए कहते हैं। यीशु पर भूत प्रेत से ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया। उन्हें पेटू, शराबी और पापियों का मित्र कहकर धिक्कारा गया। फरीसियों ने कहा, वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लिखा है मत्ती 9:34। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि वह परमेश्वर का कार्य कर रहा था। यदि वह शैतान का कार्य करता तो शैतान को वह कैसे निकालता लोगों के शरीर से लोगों के अंदर से। यीशु ने सुसमाचार में वर्णित लोगों के साथ अनुपात से अधिक समय बिताया, जैसे कि गरीब, अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, भूखे, पापी, वेश्या, कर असूलने वाले, सताए हुए, दलित, बंदी, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोग। ऐसे लोगों से यीशु मसीह बहुत अधिक समय बिताए, ये सुसमाचार में दर्ज किया गया है, यह रिकॉर्ड हम पाते हैं बाइबल में। यीशु ने धार्मिक नेता को भी चंगा किया, यीशु ने धार्मिक नेताओं को भी चंगा किया। उदाहरण हम पाते हैं लुका 7:36-50 में। समौन के घर में दावत के दौरान अक्सर हमारा ध्यान मरियम पर होता है, यहूना 12:3। लेकिन समौन फरीसी, एक पूर्व कोढ़ी था, जिसे यीशु ने चंगा किया था, हम पाते हैं मत्ती 26:6, लुका 7:36 में। नए नियम में फरीसियों को मसीह का विरोधी माना गया है, जो हृदय के मुद्दों के बजाय बाहरी रूप और व्यवहार में रुचि रखते थे। मसीह ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और उन्हें नरक की संतान कहा, यह हम पाते हैं मत्ती 23:15 में। समान को समझने के लिए यीशु ने उसे क्यों चंगा किया और यीशु उसे क्या शिक्षा देना चाहते थे, यह समझने के लिए फरीसियों को समझना आवश्यक है। वे सभा स्थलों पर नियंत्रण रखते थे और आम जनता पर बहुत नियंत्रण रखते थे। फरीसी लोग इज़राइल में धार्मिक शिक्षक थे। कोढ़ के संक्रमित लोगों पर इसका बहुत अधिक असर पड़ता था, समौन पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि फरीसियों ने कोढ़ी लोगों को अशुद्ध करके कहा, जो बाइबल में भी हम पाते हैं, लेकिन उससे बहुत ही अधिक दुर्व्यवहार करके उन्हें अछूतता के रूप में उन्हें माना और उन्हें अपने समाज से बाहर रहने के लिए कहा गया था। एक कोढ़ी होने के कारण समौन फरीसी धर्म का पालन नहीं कर सकता था, वह घर पर नहीं रह सकता था, आराधनालय में नहीं जा सकता था या मंदिर में बलिदान नहीं चढ़ा सकता था। जैसा कि हम पाते हैं बाइबल में लेविवस्था 13:45-46 में, यहूदी मन में उसे अशुद्ध, अपवित्र और परमेश्वर से अलग माना जाता था। बाइबल की शुद्धता उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनके तहत लोग पवित्रता, विशेष रूप से ईश्वरीय उपस्थिति के करीब पहुंच सकते हैं। समौन की गलती यह थी कि उसने यीशु के उद्धारक अनुग्रह को स्वीकार करने के बजाय यह मान लिया कि व्यवस्था का पालन करने से ही उद्धार मिलेगा। ठीक होने तक समौन समाज से कटा हुआ था, यह जानते हुए कि उसके पास कोई आशा नहीं है। वह यीशु के पास आया, जिन्होंने उसे शारीरिक रूप से ठीक किया और उसे समाज और आराधना में वापस लाया। प्यारो, समौन के पास कोई ऐसा चीज नहीं था जो कि यीशु मसीह को दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह अपने अनुग्रह से उसको चंगा किया था। यीशु मसीह सामान्य विश्वासियों को भी चंगा करता है, जिसे हम सुसमाचार में पाते हैं। उदाहरण के लिए लुका 8:40-42, 49-56। आयर की बेटी और विधवा के बेटे जो नायन की विधवा थी, उसको यीशु चंगा करता है। इससे समझने में हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। आज हम कुछ पहले प्रस्तुत की गई कहानी पर फिर से विचार कर रहे हैं, लेकिन यह अलग दृष्टिकोण की तलाश में। आयर कपरनहूम के सबसे बड़े आराधनालय का शासक था। उसे यहूदी समुदाय के पुरनियों ने इस पद पर नियुक्त किया था। हर शब्द के दिन वह पाठकों या शिक्षकों का चयन करता था, वक्ताओं के प्रवचनों की जांच करता था और यह सुनिश्चित करता था कि आराधनाएं व्यवस्थित और परंपरा के अनुसार हों। वह आराधनालय के भौतिक रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार था। मरकुस 5:22 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वह यीशु के पास आया और गिर करके गिड़गिड़ाने लगा और यीशु से आग्रह किया कि वह आए और उसकी बेटी को चंगा करे। मरकुस 5:22 में गिरना के लिए यूनानी शब्द का अर्थ है सीधे खड़े होने से लेकर दंडवत होने तक गिरना। आयर घुटनों के बल बैठकर गरिमा से नहीं मांग रहा था, वह मुंह के बल गिरकर भीख मांग रहा था। यीशु ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। यीशु ने आयर के अनुरोध का तुरंत जवाब दिया और यह स्वीकार किया कि समस्या का एकमात्र समाधान वही है। जिस क्षण उसकी बेटी की मृत्यु की स्पष्ट घोषणा की गई, यीशु ने पुष्टि की कि आयर की प्रेरणा विश्वास ही है। यीशु ने बस इतना कहा, डरो मत, बस विश्वास करो। लूका 8:50। 9 में यीशु का कार्य आयर के प्रति उसकी प्रक्रिया से भिन्न थी। लूका 7:13-14। यीशु उस माँ से विश्वास की मांग नहीं करते बल्कि बस कार्य करते हैं। विधवा की जरूरत और उसके दुख के प्रति उनकी अपार करुणा उनकी पुनरुत्थानकारी शक्ति को तुरंत प्रकट करती है। परिणाम क्या हुआ? सब विस्मय से भर गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लूका 7:16 कहता है, यीशु ने कभी कभी चंगे हुए व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त किए बिना ही चंगा किया। यीशु अपने हिसाब से चंगा किया, वह जानता था किसकी कैसा जरूरत है। हम आगे देखते हैं लूका 8:43-48 में वह बहिष्कृत लोगों को चंगा करता है। 12 वर्षों तक जिस स्त्री ने यीशु को छुआ था वह निरंतर धार्मिक अशुद्धता की स्थिति में रही। उसकी अलगाव केवल एक कोढ़ी या मृतक को छूने वाले व्यक्ति के अलगाव से ही बढ़कर था। उसकी स्थिति के कारण उसका बिस्तर, उसके कपड़े और जहां पर वह बैठती थी सब अशुद्ध हो गए। इस कारण वह व्यवहारिक संबंधों में शामिल नहीं हो पाई। उसकी अशुद्धता में उसे छूने वालों के लिए निरंतर धार्मिक शुद्धिकरण की जिम्मेदारियां शामिल थीं। स्त्री को मंदिर में उपासना से, परमेश्वर की उपस्थिति से और परिवार व मित्रों के साथ आराधनालय में उपासना के अनुभव से वंचित रखा गया था। उसकी अशुद्ध अवस्था के कारण भीड़ में होना अनुचित था। वह स्त्री अपनी अशुद्धता की सार्वजनिक घोषणा से होने वाली शर्मिंदा से बचने के लिए गुप्त रूप से चंगाई की आशा कर रही थी। लेकिन अगर उसकी चंगाई को गुप्त रहने दिया जाता तो उसके विश्वास की सार्वजनिक घोषणा और यीशु को पुनर्स्थापना के एकमात्र स्रोत के रूप में उसकी सार्वजनिक मान्यता को रोका जा सकता था। यद्यपि उसका विश्वास अपूर्ण था, फिर भी प्रभु ने उसे पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ तुरंत हुआ। एक क्षण में रक्त स्राव पूरी तरह से बंद हो गया। उसके शरीर के हर अंग में स्वास्थ्य और शक्ति का संचार होने लगा। यीशु की चंगाई से उसे शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पुनः स्वस्थता मिली। वह स्वस्थ हो गई। वह स्त्री अपने समुदाय और परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति में पुनः स्थापित हो गई। आगे हम देखते हैं लूका 7:1-10 में यीशु विदेशियों को चंगा करता है। यहूदियों ने सुबेदार को यीशु के ध्यान के योग्य समझा। हम पाते हैं लूका 7:4-5 में। पहली सदी में कपरनहूम एक बड़ा शहर था। सुबेदार ने उस आराधनालय के निर्माण में योगदान दिया था जहां यीशु ने उपदेश दिया और लोगों को चंगा किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबेदार को योग्य कहा गया था क्योंकि उसे योग्य कहा गया था क्योंकि वह हमारे लोगों से प्रेम करता है, यहूदियों ने कहा, लिखा है लूका 7:5 में। यहूदी पुरनियों के लिए यह बात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यहूदियों, एक अनादारित जातीय समूह के प्रति रोमी सूबेदार के रवैये का पता चलता था। पर सूबेदार ने अपने आप को अयोग्य समझा। यह हम पाते हैं लूका 7:6-8 में। वह अपने आप को अयोग्य समझ करके यीशु के नजदीक जाने की साहस नहीं की, वह दूसरों को भेजा और उससे प्रार्थना किया कि उसके दास को यीशु चंगा करे। हालांकि वह सुबेदार सच्चे परमेश्वर में विश्वासी था, फिर भी वह अभी तक पूर्ण रूप से धर्मांतरित नहीं हुआ था और इसलिए धार्मिक सेवाओं में भाग लेने से अयोग्य था। सुबेदार ने संभवत यीशु के कुछ चमत्कार देखे थे, उनके अधिकार और सामर्थ को जानता था। वह इसे कपरनहूम में यीशु द्वारा छुए और चंगे किए गए अनेक लोगों के जीवन में देख सकता था। वह अपने घर में यीशु की उपस्थिति के अयोग्य महसूस करता था और एक यहूदी के रूप में उनका सम्मान करना चाहता था। इसलिए उसने यह अनुरोध किया, वचन कहो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वह कहता है लूका 7:7 में, वह सुबेदार आध्यात्मिक जीवन से कटा हुआ प्रतीत होता था और यहूदियों की कट्टरता के कारण और भी अधिक बहिष्कृत था। इस व्यक्ति ने उस सत्य को देखा जिसके प्रति अब्राहम की संतानें अंधी थी। यीशु अविश्वासियों को भी चंगा करता है। अविश्वासियों अन्य जातियों को जो इसराइली देश के नहीं थे, यह उदाहरण हम पाते हैं मरकुस 7:24-30 में और मत्ती 15:21-28 में। यीशु ने पहले उस स्त्री की अपनी बेटी को चंगा करने की विनती को ठुकरा दी। क्यों? यह हम पाते हैं मत्ती 15:23 में। यीशु ने शुरू में उस स्त्री को वैसे ही जवाब दिया जैसे एक यहूदी आमतौर पर देता। वह एक कनानी थी, मत्ती 5:22। यह स्त्री उन्हीं मूर्ति पूजक देवताओं बाल असेरा और अनाथ की पूजा करती थी जिनके कारण इज़राइल का विनाश हुआ था। एक वफादार यहूदी के लिए वह खोई हुई नरक की निंदा की हुई और उधार के योग्य नहीं थी। अपने वंश के कारण यहूदी खुद को परमेश्वर की संतान कहते थे और अन्य जातियों को कुत्ते कहते थे। यही कारण है कि यीशु ने कनानी स्त्री की विनती के जवाब में इन रूपकों का प्रयोग किया, मरकुस 7:27। मसीह ने उस स्त्री के अनुरोध का तुरंत उत्तर नहीं दिया, उन्होंने एक तिरस्कृत जाति के इस प्रतिनिधि का स्वागत वैसे ही किया जैसे यहूदी करते। ऐसा करके उन्होंने यह इरादा किया कि उनके शिष्य इस बात से प्रभावित हों कि यहूदी इस मामले को किस ठंडे और निर्दयी तरीके से लेते हैं। बाद में यीशु ने उसकी बेटी को चंगा किया। इस स्त्री ने अपनी बेटी की दुष्ट आत्माओं के कब्जे से मुक्ति की तीव्र आवश्यकता को पहचाना और भरोसा किया कि यीशु के पास उसकी चिकित्सा का उत्तर है। यीशु ने उसे अपनी जीवन शैली बदलने, यहूदी बनने, धर्मोपदेश सुनने या शिष्य बनने के लिए नहीं कहा। उसके बाद ही उसने ऐसा किया। उसके सामने गिरकर वह पुकार उठी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मत्ती 15:25। यीशु ने आवश्यकता और विश्वास के इस प्रदर्शन का सम्मान किया क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, एक ही प्रभु सबका प्रभु है, पौलुस कहता है रोमी 10:12-13 में, और अपने सब नाम लेने वालों को धन देता है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, रोमियो 10:12-13। यीशु के शोर और सैदा के आगमन ने, ये तायर और सिडोन के आगमन ने इस माँ के अपनी बेटी को शैतान के चंगुल से बचाने के संघर्ष को समाप्त कर दिया। हमें भी यह जिम्मेवारी है कि हम वे लोगों की सहायता करें जो यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु से दूर हैं, उससे यीशु के पास लाएं या उसे उन्हें यीशु के विषय बतलाएं ताकि वे यीशु के महान शक्ति, उसके चमत्कारी शक्ति का लाभ उठा सके और शारीरिक और आत्मिक चंगाई प्राप्त कर सके। यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के बारे में नहीं जानता तो आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम को समझने में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें यीशु के बारे में बतला सकते हैं, आप उन्हें यीशु के चंगाई शक्ति के बारे में बतला सकते हैं, उन्हें यीशु के पास ला सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारो, मसीह ने राष्ट्रीयता, पद या पंथ का कोई भेद नहीं माना। शास्त्री और फरीसी स्वर्ग के उपहारों का स्थानीय और राष्ट्रीय लाभ उठाना चाहते थे और दुनिया में परमेश्वर के परिवार के बाकी सदस्यों को इससे अलग रखना चाहते थे। लेकिन मसीह विभाजन की हर दीवार को तोड़ने आए थे। वह यह दिखाने आए थे कि उनकी दया और प्रेम का उपहार उतना ही असीम है जितना कि हवा, प्रकाश या बारिश की फुहारें जो धरती को तरोताजा करती हैं। उन्होंने किसी भी इंसान को बेकार नहीं समझा, बल्कि हर आत्मा पर उपचार का उपयोग लागू करने की कोशिश की। प्यारो, धार्मिक नेता आम लोग, संस्कृति और समाज से बहिष्कृत लोग, विदेशी और अविश्वासी, सभी ने मसीह की बिना शर्त उपचार शक्ति का अनुभव किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं सबों को चंगा करने के लिए। आप उन पर विश्वास करिए। आप यदि विश्वासी हैं और यह वचन को सुन रहे हैं तो उनकी मदद करें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं जानते हैं। उन्हें उसके पास लाने के लिए मदद करिए। उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाइए। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप यह जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल करता है, आपको चंगा करने चाहता है, आपको हर तरह से चंगा करना चाहता है, आपको शारीरिक चंगाई देना चाहता है और आपको आत्मिक चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा चंगा करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि वह हमारा उद्धार करे, हमें हमारे हरेक शारीरिक और आत्मिक बीमारियों से चंगा करे। पिता परमेश्वर, हम उस विश्वास से तेरे पास आते हैं। हमें तेरा पवित्र आत्मा का सहारा दे। हम सबों को तो आशीष दे। हमें तेरे नजदीक
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।